ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा नंबर का श्लोक है ना। यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूपधिक या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंश भूतान पायने। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आकृति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार थी। तात्पर्य, संपत्ति की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की चिर संगिनी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जो चिर संगी हैं, एक साथ आकृति के गर्भ से प्रकट हुए। जैसा कि अनेक विद्वानों ने पुष्टि की है, विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे हैं, नारायण परो व्यक्तात्। अतः उनका यह चिर संबंध बदला नहीं जा सकता है। इसलिए आगे चलकर आकृति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह कर लिया। श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद का प्रारंभिक प्रसंग है। इसमें मनु महाराज के पुत्रियों की वंशावली का वर्णन है। यद्यपि मनु 14 होते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु की वंशावली का वर्णन है। ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते हैं। स्वयं भगवान का नाम है। स्वयं से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते हैं और स्वयंभू से उत्पन्न मनु को स्वयंभू मनु कहते हैं। तो यद्यपि स्वयंभू मनु की पुत्री देहूति का वर्णन तीसरे स्कंद के अंत में हो चुका है, फिर भी यहाँ उनके अन्य वंशावली का वर्णन कर रहे हैं, उनके अन्य पुत्रियों का, और आगे उनके पुत्रों का भी वर्णन करेंगे। तो हम प्रारंभ से ही लेते हैं क्योंकि 3 श्लोक केवल आगे है। तो इस कथा को मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। तीसरे स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के अनेक प्रश्नों के उत्तर के रूप में विदुर मैत्रेय संवाद को प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में महाराज परीक्षित ने अनेकों प्रश्न किया है। तो उन प्रश्नों के क्रम में सृष्टि विषयक अनेक प्रश्न किए हैं। तो उनके प्रश्नों को सूत रूप में संक्षेप में प्रारंभ करके फिर बाद में विस्तार करना चालू किया है तीसरे स्कंद में। तो महाराज परीक्षित के प्रश्नों को सूत रूप में बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने चतुश्लोकी भागवत की चर्चा की 9वें अध्याय में, और 10वें अध्याय में भागवत के अंतर्गत वर्णित विषयों के रूप में भागवत के 10 शीर्षकों का वर्णन किए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा मुक्ति निरोध आश्रय आदि। तो लेकिन इस सूत्रात्मक वर्णन से महाराज परीक्षित को संतुष्टि नहीं हुई। फिर महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं तो उनके प्रश्नों को स्पष्ट रूप से व्याख्या करने के लिए तीसरा स्कंद प्रारंभ करते हैं कि जिस तरह का प्रश्न आप कर रहे हो उसी तरह का प्रश्न विदुर जी मैत्रेय मुनि से किए थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो कहां प्रश्न किए थे ये जिज्ञासा करते हैं महाराज परीक्षित, कहां विदुर और मैत्रेय का संग हुआ, और ये दोनों महाभागवत बहुत बड़े व्यक्ति हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो इन दोनों के बीच में जो चर्चा हुई होगी वो अत्यंत महत्वपूर्ण हुई होगी, इसलिए आप कृपा करके विस्तार से मैत्रेय और विदुर के संवाद को प्रस्तुत कीजिए, हम सुनना चाहते हैं। तो मैत्रेय और विदुर कैसे मिले, कहाँ मिले, किस अवस्था में मिले, इसका वर्णन चार अध्यायों में करते हैं। तीसरे स्कंद के चार अध्यायों में मैत्रेय और विदुर के मिलन के भूमिका के रूप में, उपक्रम के रूप में उद्धव और विदुर के मिलन का वर्णन चार अध्यायों में करते हैं। जमुना पुलिन पर वृंदावन में कृष्ण विरह से संतप्त उद्धव बैठे हुए हैं और उधर तीर्थ यात्रा करते हुए 35 वर्षों के बाद अपने स्वजन से अचानक अकस्मात विदुर जी मिलते हैं। तो विदुर और उद्धव के बीच में चार अध्याय हुआ जिसमें कृष्ण के अवतार से लेकर मौसल लीला तक का वर्णन उद्धव जी किए। यदि वो कथा के मूड में नहीं थे, कृष्ण विरह के संतप्त अवस्था में कृष्ण के गुणों का स्मरण किए, इसके बाद अंत में वर्णन करते हैं कि हे विदुर जी, श्री भगवान इस पृथ्वी को छोड़ते समय आपका स्मरण किए और मुझको भागवत दिए, मैत्रेय मुनि भी साथ में थे। तो विदुर जी जिज्ञासा करते हैं कि हे उद्धव, वह भागवत मुझे भी सुनाओ। तो उद्धव जी कहते हैं कि इसके लिए आपको मैत्रेय मुनि का साथ करना पड़ेगा, क्योंकि श्री भगवान जाते जाते मैत्रेय मुनि को स्पेशल आदेश दिए कि यह संदेश, यह भागवत विदुर जी को जरूर सुना देना। तो भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त करके मैत्रेय मुनि आपको सुनाना चाहते हैं, इसलिए आप उनका संग कीजिए। तो फिर पांचवें अध्याय में, तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय में विदुर जी हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से मिलते हैं और वहां पर मैत्रेय मुनि के चरणों में विनीत भाव से नमन करके और अनेकों प्रश्न करते हैं। उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर में मैत्रेय मुनि दो स्कंद की कथा कहे, पूरा तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद। तो भागवतम के अंदर प्रसंग बदलता है, लिंक बदल जाता है, कहां से क्या आ गया, तो इसको क्रमशः पढ़ने से समझना पड़ता है। तो यदि हम लोगों को जो भागवत मिला है नैमिषारण्य में, वक्ता सुत गोस्वामी हैं और श्रोता शौनक आदि ऋषि हैं, और सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के उत्तर के क्रम में परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी को प्रस्तुत करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उत्तर देते समय अनेक वक्ताओं को प्रस्तुत करते हैं, जैसे अभी मैत्रेय मुनि को, बाद में कभी श्री कृष्ण उद्धव को, फिर कहीं और दूसरों को। तो इस तरह यह संपूर्ण चौथा स्कंद और तीसरा स्कंद के वक्ता हैं मैत्रेय मुनि। तो यहाँ मैत्रेय मुनि कथा सुना रहे हैं विदुर जी को, और विदुर जी अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, सृष्टि विषयक प्रश्न ज्यादा किए हैं। तो सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसको कहते हुए प्रारंभिक सृष्टि के वर्णन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में स्वयंभू मनु की चर्चा हुई। सृष्टिकर्ता भगवान के बाद ब्रह्मा जी हैं। भगवत सृष्टि को सर्ग कहते हैं और ब्रह्मा के बाद अब तक जो सृष्टि का विस्तार हुआ है उसको विसर्ग कहते हैं। तो ये विसर्ग की कथा चल रही है, सर्ग विसर्ग। तो इसमें मैत्रेय मुनि प्रारंभ करते हैं चौथा स्कंद, तो कहते हैं मनुस्तु शतरूपायाम त्रिशः कन्या से जग गिरे आकुति देहूति च प्रसूति रीति विश्रुता। मनु महाराज स्वयंभू मनु शत्रुपा से तीन कन्या प्राप्त किए जिनका नाम था आकुति, देवति और प्रसूति। तीन नामों से प्रसिद्ध थी और तू कहकर मनुस्तु मनु महाराज ने तीन पुत्रियां प्राप्त की। इसके साथ दो पुत्र और थे। यहाँ मनुस्तु कहा और चकार कह रहे हैं, कन्याश्च च और का वर्णन तब होता है जब कोई और दूसरे का वर्णन करता है, राम श्याम और, तो और कह देने का मतलब कि दो के बाद तीसरा भी है जिसका नाम नहीं लिया गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि त्रिशह कन्याश्च तीन कन्या और मतलब पुत्र भी। तो यहाँ श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं मनुस्तु इति और चकारादौ पुत्रौ च, तीन कन्या और दो पुत्र जिनका नाम है प्रियव्रत और उतानपाद, आकुति, देहुति, प्रसूति, प्रियव्रत और उतानपाद। ये पांच संतान स्वयंभू मनु महाराज शत्रुपा से प्राप्त किए। और इसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं आकुतिम रुचये प्रादाद अपि भ्रातृमतिम नृप पुत्रिका धर्म माश्रित शत्रुपानुमोदित। ये सब श्लोक हो चुका है लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि इस जो यहाँ श्लोक है उसका लिंक है उसे। तो आकुतिम रुचये प्रादात, स्वयंभू मनु ने आकुति को रुचि प्रजापति को दिया, रुचि प्रजापति के साथ विवाह किए। अपि भ्रातृमतिम नृप, भ्रातृमतिम आकुतिम, यद्यपि आकुति भाई वाले थी, भाई वाले आकुति को रुचि प्रजापति को दिए और पुत्रिका धर्म आश्रित शत्रुपानुमोदित। पुत्रिका धर्म के आश्रय लेकर स्वयंभू मनु ने आकुति को रुचि प्रजापति को दिया। तो पुत्रिका धर्म का अर्थ यह है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि अभ्रातृकाम प्रदास्यापि तुभ्यम कन्याम अलंकृतम अस्यामेव जायते पुत्र समे पुत्रो भवेदिति। अगर जो पिता पुत्रहीन है, केवल पुत्रियां उसको है, तो वह अपने बेटी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर सकता है और इस शर्त पर बेटी का विवाह किया जाए कि हमारी बेटी से जो प्रथम संतान होगा, पहला बेटा होगा, वो मुझको लौटाना पड़ेगा। विवाह के समय यह शर्त किया जाता है कि बेटी से उत्पन्न प्रथम पुत्र मुझको देना पड़ेगा। तो इस धर्म को पुत्रिका धर्म कहते हैं। तो इस पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर मनु महाराज ने विवाह किया, रुचि प्रजापति को आकुति को दिए। फिर यहाँ प्रश्न यह है कि स्वयंभू मनु को पहले से दो पुत्र थे, फिर उन्होंने अपनी बेटी के से उत्पन्न पुत्र को क्यों चाह रहे हैं, क्यों पुत्र का धर्म से विवाह करना चाहते हैं? तो उनके संतान उत्तराधिकारी के तो कमी नहीं, दो पुत्र हैं, फिर भी पुत्र का धर्म क्यों स्वीकार किए, बेटी को इस शर्त पर क्यों दिए? तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्वयंभू मनु को पहले पता चल गया था कि हमारी बेटी के गर्भ से प्रथम पुत्र के रूप में साक्षात भगवान का अवतार होगा। तो श्री भगवान से अत्यंत आत्मीयता के कारण स्वयंभू मनु ने यह शर्त रखा। और फिर यहाँ एक बात और कहा गया श्लोक में, सतरूपानुमोदित, सतरूपा इसका अनुमोदन की। केवल मनु महाराज ही इस तरह की इच्छा नहीं किए, सतरूपा भी इसका अनुमोदन की, सतरूपा भी चाहती थी। तो इसका कारण यह है कि आकुति बड़ी लाडली बेटी थी सतरूपा का, बहुत प्रेम करती थी, प्रथम पुत्री थी, तो उससे सतरूपा जी का आसक्ति था अपने बेटी से। लेकिन बेटी को तो अपने साथ सदा रखा नहीं जा सकता है, विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो उस बेटी के आत्मीयता के कारण बेटी के पुत्र को चाह रही थी सतरूपा, और मनु महाराज भी चाह रहे थे। तो इस सिद्धांत पर, इस विचार से उन्होंने पुत्र का धर्म का आश्रय लिया। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि स्वयंभू मनु ने पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर सबके लिए रास्ता क्लियर कर दिया कि कोई पुत्री वाला है तो निराश न हो, पुत्री के बेटा को भी अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि बेटा से जो बेटा होगा वही संतान का भागी होगा, इसलिए पुत्री से उत्पन्न बेटे को भी लिया जा सकता है। स्वयंभू मनु ने यह व्यवहार करके समाज के लिए एक शिक्षा दिया कि इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है, उसको स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि मानव समाज के जनक ने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि मनु महाराज ने आदर्श प्रस्तुत किया है कि बेटी से उत्पन्न संतान भी उत्तराधिकारी हो सकता है, उसको पुत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद प्रजापति स भगवान रुचि तस्या अजी जनत मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। अब वह मुनि रुचि प्रजापति आकुति से को स्वीकार किए, और यद्यपि वो भगवान के भक्ति में थे, अपने बड़े उन्नत व्यक्ति थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, कृष्ण भावना भावित थे, और उन्होंने पत्नी के रूप में आकुति को स्वीकार किया और उन आकुति के गर्भ से दो संतान प्राप्त किए, एक पुत्र और एक पुत्री, एक साथ एक पुत्र और पुत्री प्राप्त किए। तो अब ये चौथा श्लोक है, यस्तयो पुरुष साक्षात विष्णु यज्ञ स्वरूप धिक या स्त्री सा दक्षिणा भूते रंस भूतान पायनी। तो उन्होंने दो संतान प्राप्त की एक साथ, एक स्त्री और एक पुरुष, एक पुरुष और एक स्त्री, एक बेटा और एक बेटी, जुड़वा संतान के रूप में एक साथ दोनों का जन्म हुआ। तब यहाँ कह रहे हैं कि उसमें से यस्तयो पुरुष साक्षात, उसमें जो पुरुष था वह साक्षात विष्णु यज्ञ स्वरूप धिक, साक्षात भगवान विष्णु ही यज्ञ स्वरूप धारण करके यज्ञ स्वरूप के रूप में अवतार लिया। और जो स्त्री थी सा दक्षिणा, उसका नाम तो दक्षिणा था, अब भूतेर अंश भूतान पायनी, अंश भूतान पायनी, वो भगवान उनके अंश भूता थी, लक्ष्मी का अंश भूता थी, साक्षात लक्ष्मी ही दक्षिणा के रूप में आई। अनपायनी का मतलब जो नित्य संगिनी है, कभी भी साथ नहीं छोड़ती, वही लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में आई। तो इस पर भूते लक्ष्मा अंश भूता है, श्रीपाद सिद्धर स्वामी कहते हैं कि भूते लक्ष्मा अंश भूता शब्द यह स्पष्ट कर रहा है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, अतस्तयो विवाहो न विरुद्ध इति भाव, भविष्य में इन दोनों में आपस में विवाह भी होगा तो ये विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उनकी अनपायनी अंशभूता लक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणा है, उनसे वो अलग रह नहीं सकती, तो बाद में इन दोनों में विवाह होगा। पुत्र जो यज्ञ पुरुष के रूप में आए उनको मनु महाराज प्राप्त कर लिए। जब दो संतान हुए, एक लड़का एक लड़की, लड़के के रूप में साक्षात भगवान विष्णु आए और लड़की के रूप में स्वयं लक्ष्मी आई, तो मनु महाराज जो शर्त रखे थे कि पहला पुत्र मैं प्राप्त कर लूंगा, तो रुचि प्रजापति ने उनको पुत्र दे दिया। तो यज्ञ पुरुष को तो मनु महाराज ले गए और दक्षिणा रह गई इनके पास, रुचि प्रजापति के पास। तो जब दक्षिणा सयानी हुई विवाह के योग्य, तो उन्होंने यज्ञ पुरुष को ही पति के रूप में वरण किया। तो स्वयंभू मनु यज्ञ पुरुष का विवाह दक्षिणा के साथ कराया। ये आगे के श्लोकों में इसका वर्णन है। तो इसलिए यहाँ श्रीधर स्वामी संकेत करते हैं कि वो अनपायनी है, अंशभूता है, भूतिर लक्ष्मी, अंशभूता वो स्वयं लक्ष्मी के ही स्वरूप है, उनके ही अंश से उत्पन्न हुई है। इसलिए अतस्तयो विवाहो न विरुद्ध इति भाव, इसलिए उनका विवाह विरुद्ध नहीं है। और जहां तक वैदिक मर्यादा की बात है, वो हम लोगों के लिए, मानव समाज के लिए है, वो भगवान के लिए नहीं है। महाराज श्री एक उदाहरण देते हैं कि रोड पर जो रेड लाइट है वो रोड पर चलने वाले सवारी के लिए है, आकाश में चलने वाले वायुयान के लिए नहीं है। अब रोड का रेड लाइट देखकर वायुयान नहीं रुक सकता, वो तो अपने गति से ऊपर जाएगा। अगर कोई देखने वाला कहे कि देखो यहाँ रेड लाइट है, फिर भी वो जहाज वाला ले जा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, तो उसको देखना नहीं है, उसके लिए है ही नहीं। उसी प्रकार वैदिक मर्यादा श्री भगवान के लिए नहीं है। यद्यपि श्री भगवान इस वैदिक मर्यादा को मानव समाज ठीक से पालन करे, इसके लिए कभी कभी भगवान अवतार लेकर उन वैदिक मर्यादाओं का पालन करते हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन उन पर वो लागू नहीं होता, कोई जरूरी नहीं कि उनको पालन ही करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण वैदिक मर्यादाओं का पालन किए और नहीं भी किए, तो उन पर लागू होता ही नहीं। और जैसे केवल यह प्रथम केस नहीं है कि दक्षिणा और यज्ञ पुरुष आपस में विवाह कर लिए, इसके अतिरिक्त भी हम लोग भागवत में उदाहरण सुनते हैं कि जब बेन के भुजाओं को मथा गया तो उससे पृथु महाराज और अर्ची उद्भूत हुए, निकले उसके भुजाओं से। तो पृथु महाराज विष्णु अंश भूत थे, भगवान विष्णु के अंश थे और अर्ची स्वयं लक्ष्मी थी, तो इसलिए पृथु और अर्ची का आपस में विवाह हुआ। और इसके साथ ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में स्वयंभू से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए उनके भुजा से, और शत्रुपा भी उनके ही बाएं भुजा से उत्पन्न हुई। और ये भी मनु महाराज भी विष्णु अंश है। तो ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण शत्रुपा और मनु दोनों भाई बहन ही हुए, लेकिन ये दोनों भी आपस में विवाह किए। शत्रुपा को मनु महाराज ने स्वीकार किया। तो ये सब सुनने पर थोड़ा सा उत्पटांग लगता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ अनपायनी शब्द कहकर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि वो लक्ष्मी विष्णु से अलग कभी नहीं हो सकती। अनपायनी का अर्थ है कभी नहीं पृथक होने वाली। यहाँ भी अनपायनी शब्द का वर्णन है और वहां भी जब अर्ची और पृथु के साथ विवाह हुआ तो वहां भी कहा गया है इयम च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्य अनपायनी। तो ये जो स्त्री के रूप में उत्पन्न हुई वो साक्षात लक्ष्मी थी, और वह पुरुष पृथु से जो कभी अलग नहीं हो सकती, तो उनकी वो पत्नी बनी। तो इस प्रकार इस श्लोक में यही विशेष बात बतलाई गई कि स्वयं भगवान जग पुरुष के रूप में आए और लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में, यद्यपि दोनों जुड़वा संतान के रूप में, भाई बहन के रूप में आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए और स्वयंभू मनु ने उनको प्राप्त किया। बाद में कथा आगे का श्लोकों में वर्णन है कि आपस में लोग विवाह किए और जग पुरुष भगवान ने दक्षिणा के गर्भ से 12 संतान तोष प्रतोष संतोष आदि 12 पुत्रों को प्राप्त किए। तो यहाँ आगे आप पढ़ेंगे सुनेंगे कि जग पुरुष स्वयंभू मनु के समय मंत्र सरकार में भी भाग लिए। सरकार जैसे अपने देश की सरकार है वैसे एक मनु के भी सरकार है, मनु महाराज की सरकार। तो उनके 6 फैकल्टी है मनु सरकार की। तो मनु सरकार में 6 विभाग है, उसमें मनो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इंद्रासुर गणाश्चैव सर्वे पुरुष शासना। 8वें स्कंद के 14वें अध्याय में दूसरे श्लोक में वर्णन है कि मनु सरकार के 6 विभाग हैं। उसके विषय में कहा गया कौन कौन विभाग है, मनु मनुपुत्र मुनिगण सप्तर्षिगण इंद्र और इंद्र के सहायक देवता और मनवंतरावतार भगवान, 6 विभाग है। तो कोई सिलेक्ट ये सबके विषय में एक विशेष बात कहा गया सर्वे पुरुष शासना। ये विभाग ये जो मिनिस्ट्री है इलेक्शन से नहीं बनती, ये सिलेक्शन से बनती है। परम पुरुष ही सिलेक्ट करते हैं कौन कौन इस मंत्रिमंडल में रहेंगे। जब बड़ा व्यक्ति छोटों के बीच से किसी को सिलेक्ट करता है, चुनता है, तो उसको सिलेक्शन कहते हैं। और छोटे लोग जब शक्ति दे करके किसी छोटे को भी वोटिंग करके बड़ा बना देते हैं तो इसको इलेक्शन कहते हैं, उसको शक्ति देते हैं, वोट देते हैं। तो छोटे में से चुनकर बड़ा कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो छोटे लोग जब चुनाव करते हैं उसको इलेक्शन, और बड़ा जब चुनता है तो उसको सिलेक्शन। तो यहाँ सर्वे पुरुष शासना, सभी परम पुरुष भगवान के द्वारा सिलेक्टेड व्यक्ति हैं इस मनु सरकार में। तो मनु सरकार के 6 विभाग में 2 विभाग जग पुरुष संभाले। प्रथम मनवंतर में मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है, उसमें से प्रथम मनवंतर मनु महाराज स्वयंभू मनु के जिम्मे था। तो उसमें 2 विभाग जग पुरुष भगवान संभाले, एक मनवंतरावतार और एक इंद्र पद को भी संभाले, देवताओं का लीडर बनकर इंद्र पद को भी संभाले हैं। इसका वर्णन 8वें स्कंद में स्पष्ट रूप से है, पहले अध्याय में ही। तो इस प्रकार जग पुरुष भगवान स्वयंभू मनु के पुत्र के रूप में या पुत्री के पुत्र पौत्र के रूप में जो भी कहिए उनके शासन में आए और आकर के उनको बहुत सहायता किए। एक बार तो स्वयंभू मनु भगवान का भजन कर रहे थे, समाधि में थे, ध्यान कर रहे थे आंख बंद करके। तब तक कुछ असुरों ने दैत्यों ने समझा कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, भूखे थे, उनको खाने के लिए दौड़े, आंख बंद किए थे, कुछ हिल डुल नहीं रहे थे, लग रहा था कि बस मरा हुआ कोई व्यक्ति है, कोई शक्ति नहीं, तो उन पर आक्रमण किए। उस समय भगवान जग पुरुष उन असुरों को मार करके मनु महाराज की रक्षा किए और देवताओं की सहायता से इंद्र पद को संभाले एक मनवंतर तक। तो इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू मनु के शासन काल में ही जग पुरुष का अवतार लेने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है। उस समय आए और आकर ऐसे नहीं कि चुपचाप एक साइड में कोई काम की, पूरा 71 चतुर्युगी इंद्र पद पर रहे, पूरे मनवंतर में स्वयंभू मनु के साथ दिए। तो भगवान यज्ञ पुरुष सृष्टि प्रारंभ आए, इसका कुछ उद्देश्य है। वैदिक ज्ञान की स्थापना भगवान का मूल उद्देश्य है। वैदिक ज्ञान वेद शास्त्र जो संदेश देता है कि सभी जीवों को भगवान से संबंध रखना चाहिए, सारे पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में ये विशेष बात कही गई है। जैसाम पति, भगवान को यज्ञ पति कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्या के एकमात्र भोक्ता हैं। भगवत गीता के अंतर्गत ये सब संदेश है। यज्ञा यज्ञार्थात कर्मणः, यज्ञ के लिए, परम पुरुष के संतुष्टि के लिए ही कर्म करना चाहिए। और प्रत्येक कर्म का लक्ष्य भगवान है। भगवान की संतुष्टि विधान ही मनुष्य समाज का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसकी स्थापना के लिए स्वयं भगवान ही यज्ञ पुरुष के रूप में आए और ये आदर्श जगत को के सामने दिए, सबको सिखाए कि किस रूप में सभी कर्मों का समर्पण भगवान के प्रति किया जाता है। जितने भी वैदिक अनुष्ठान हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब सभी भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए अथवा संतुष्टि के लिए है। जितने भी वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं वो भगवान के प्रीति के लिए की जाती है, किए जाते हैं, और भगवान को समझने के लिए। जो भी वेद के अलग अलग विभाग है, अलग अलग व्याख्या है, वो भगवान को समझने, कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट घुमाकर भगवान को ही समझने, समझाने और भगवान को संतुष्ट करने का लक्ष्य वेदों का है, शास्त्रों का है। तो इस आदर्श की स्थापना करने के लिए भगवान को ही आना पड़ा। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर बीच में और अंत तक हर क्षण भगवान का हाथ है, हर समय। आप सृष्टि के प्रारंभिक अवस्था को जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब बात समझ में आएगी कि ब्रह्मा जी को पग पग पर दिक्कत महसूस हो रहा था। एक तो ज्ञान का भाव था, उस ज्ञान के लिए उनको प्रयास करना पड़ा, उनको ज्ञान भी दिया गया, फिर भी सृष्टि जब प्रारंभ करे किए तो बीच बीच में अड़चने आती थी, फिर भगवान का स्मरण करते, फिर भगवान उनको ज्ञान देते, एक एक पग पग पर। और जब सृष्टि का विस्तार हो गया, सृष्टि प्रारंभ हो गया, लोग उत्पन्न हो गए, तो पालन करना बड़ा कठिन काम हो गया। तो भगवान समझे कि ये ब्रह्मा के बस की बात नहीं है, इसमें तो स्वयं हाथ लगाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान स्वयं पालन करता विष्णु के रूप में है। सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा भले करा दिए, यदि ब्रह्मा अपने से कुछ नहीं किए हैं, लेकिन एक निमित्त ब्रह्मा को बना दिए, लेकिन पालन में किसी दूसरे को निमित्त नहीं बना पाए, स्वयं उनको भाग लेना पड़ रहा है। इसलिए पालन करता स्वयं विष्णु है। शुरू से अब तक, अंत तक, अनादि काल से अनंत काल तक भगवान का ही हाथ है। इस बात को लोग नहीं समझ पाते हैं, भूल जाते हैं संसार के व्यामोह में, प्राकृत वातावरण में, भोगों में पढ़कर। तो हर भागवतम के अंदर प्रत्येक स्तुतियों में, प्रत्येक वक्ताओं के द्वारा इस बात का स्थापना है, निरूपण है कि भगवान सृष्टि करने वाले हैं, भगवान पालन करने वाले हैं, भगवान ही इस जगत को चलाने वाले हैं, भगवान जगत का संहार करते हैं। सभी लोग इस बात को कहते हैं, इसलिए कि कहीं इस बात को भूल न जाएं। इस लोग भूल जाते हैं प्रायः। और इसके दूसरा कारण यह है कि जब व्यक्ति भगवत स्वरूप से जानकारी होता, भगवान के स्वरूप के विषय में जान जाता है, तब बिना कहे रही नहीं पाता है। जब हूबहु समझ जाता है तो बिना कहे नहीं रह पाता कि हे प्रभु, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही जगत के पालन करता है, आप ही सृष्टा है, आप ही है, बिना कहे रह नहीं पाता। क्योंकि अब तो उनके सामने कपट नहीं चलता है, छिपा कर कुछ कह नहीं सकता। कितना हो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे स्वयं ब्रह्मा हो, शिव हो, सनकादिक कोई भी कितना हो उच्च कोटि का व्यक्ति है लेकिन अपने को कर्ता नहीं मान पाता, क्योंकि असलियत की बोध उसको हो जाती है, इसलिए वो बिना कहे रह नहीं पाता। और इस रहस्य को जनरल समाज में लोग नहीं जानते, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। देवर्षि नारद भागवत में पुरंजनोपाख्यान में कहते हैं, तत् कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मति रेया। जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का एकमात्र लक्ष्य है श्री भगवान को संतुष्ट करना। जत कर्म हरितोषम जत, तो तत् कर्म हरितोषम जत, जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का वास्तविक फल है, वास्तविक सार्थकता है कि उन कर्मों से भगवान संतुष्ट हो जाए। और सा विद्या तन्मति रया, और जितनी पढ़ाई लिखाई डिग्री डिप्लोमा है, जितने कोर्स है, उसका वास्तविक सार्थकता है कि लोग भगवान को समझ जाए, भगवान में उनकी मति लग जाए। सा विद्या तन्मति रया, वास्तव में विद्या वह है, ज्ञान वह है, पढ़ाई वह है जिससे भगवान में मति लग जाए। भगवान से मति को अलग कर दे वह अविद्या है, अज्ञान है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वर्तमान जगत में विद्यालय नहीं है, सब अविद्यालय है। वो प्रभुपाद तो कसाई खाना कहते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी सब कसाई खाना है। कसाई खाने में हत्या की जाती है जीवों की, और इन विद्यालयों में व्यक्तित्व का ही हनन कर दिया जाता है, पूरा पूरा कृष्ण से अलग कर दिया जाता है। जो जीव का स्वरूप है कि कृष्ण की सेवा करे, भक्ति करे, जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण की दासता करे, उस स्वरूप का हनन कर दिया जाता है। ऐसी कचड़ा बातें समझा दी जाती, बता दी जाती है कि वो भगवान की भक्ति से बिल्कुल दूर हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कसाई खाना कहते थे विद्यालयों को। तो इस प्रकार भगवान यज्ञ पुरुष सृष्टि के प्रारंभ में आकर ये आदर्श प्रस्तुत किए कि यज्ञ तपस्या परिश्रम जो कुछ भी किया जाए भगवत संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रीति के लिए। तो मन्वंतर सरकार में हिस्सा लेकर त्रिलोकी का स्वामी होकर सब तरह से इसकी स्थापना भगवान किए। और मूल मुख्य रूप से इस श्लोक में स्वयं लक्ष्मी और भगवान विष्णु भाई बहन के रूप में, जुड़वा संतान के रूप में उत्पन्न हुए और ये अलग अलग हो गए, अपने नाना के पुत्र के रूप में चले गए स्वयंभू मनु के पास, और ये दक्षिणा रुचि प्रजापति के पास रही, और आपस में दोनों फिर विवाह किए। ये सब कथाएं आप आगे सुनेंगे, जिसको मैं संक्षेप में थोड़ा सा लिंक के रूप में कह दिया। तो यही है इस श्लोक के मूल भाव। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे। जिज्ञासा हाँ अब भगवान अज नहीं है, भगवान भी अज है ना। तो भगवान को भी अज कहा जाता है, अजन्मा कहा जाता है। जब भगवान जन्म स्वीकार करते हैं तो लक्ष्मी जी को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? आए मतलब तो क्या अर्थ है अयोध्या का? अच्छा, अयोध्या अरे ये सब शब्द का लक्ष्मी, देखिए यहाँ साक्षात लक्ष्मी की बात भी नहीं है, अंश भूता कहा गया तो अंश भूता न पायनी कहा गया, उसमें खास संतन ये स्वयं भी आवे तो क्या दिक्कत है उनको क्या दिक्कत। देखिए भगवत इच्छा ही सर्वोपरि है, अगर भगवान जो चाहते हैं वो होना चाहिए, और ये इसी में किसी भी चीज की सार्थकता है। अगर लक्ष्मी अगर किसी की पुत्री बनती है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़े है उन, वही तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप इसी रूप में समझिए, कोई बात नहीं। और अब रमाकांत प्रभु आप कुछ इस पर बताइए, इनके प्रश्न का उत्तर है यहाँ बतला देंगे तो सबको समझ में आएगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो स्वीकार करे कोई माता तो क्या दिक्कत है। महाराज श्री कहते हैं, गुरु महाराज एक बात कहते हैं, किसी भी पुरुषार्थ से, किसी भी तपस्या से कितना हो कोई काबिल हो, लेकिन भगवान नहीं हो सकता, भगवान का बराबर नहीं हो सकता। अगर वो चाहे तो भगवान से बड़ा हो सकता है। हाँ तो ठीक है, देखिए भगवान से बड़ा हो सकते तो भगवान का बाप बन सकता है, लेकिन अगर वो चाहे, महाराज कहते हैं भगवान का बाप बन सकता है, माँ बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। अगर दशरथ और नंद चाहे तो देखने से समुद्र नहीं खोल सकता, गिरिराज नहीं उठा सकते, लेकिन बाप तो वही है नंद जी तो भगवान की कोई भक्त चाहे कि हम बेटा बना ले तो भगवत गीता का ये सिद्धांत फेल कर जाएगा ना, कि जो जिस भाव से मेरा भजन करता है उस भाव की पुष्टि करता हूँ, यथा माम प्रपद्यन्ते ताम भजामि हम। तो दक्षिणा है ना, लक्ष्मी कहाँ है, दक्षिणा है, अंश भूता है, तो हो ही गया। मैं तो इसका ये भी उत्तर दिया ना कि वो अंश भूता है, मान वही मानिए। हाँ अगर वो साक्षात भी आना चाहे तो सैद्धांतिक दिक्कत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये भी कहना चाहता। ये तो अंश भूता ठीक है, दक्षिणा है, लेकिन साक्षात लक्ष्मी भी किसी की पुत्री बने तो इसमें कोई सैद्धांतिक गड़बड़ी नहीं है, वो आ सकती हैं। लक्ष्मी कोई नहीं हो सकता, लक्ष्मी का माँ हो सकता है, पिता हो सकता है, तो महाराज के जो सिद्धांत है बात जो कहते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।